हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने कार्यक्रम हमसे है देश में, जहां हम बात करते हैं लोकतंत्र की और उससे जुड़े कई पहलुओं की। मैं हूं कामायनी
और मैं हूं कबीर।
कबीर, आज हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात करेंगे,
यानी मीडिया, जैसे न्यूज चैनल, अखबार वगैरह वगैरह।
जहां लोकतंत्र के तीन स्तंभ यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी साथ मिलकर काम करते हैं, वहीं मीडिया चौथा स्तंभ बनकर इन सभी पर नजर रखता है और लोगों तक सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाता है।
और एक सशक्त लोकतंत्र वही है जहां मीडिया स्वतंत्र है और पत्रकार अपने आप को सुरक्षित पाते हैं, क्योंकि मीडिया ही तो अलग अलग नीतियों, कार्यवाहियों, मुद्दों पर नागरिकों की सोच विकसित करने और उन्हें अपनी धारणाएं बनाने में सक्षम बनाता है, ताकि वे सरकार से सवाल करें और सरकारें उनके प्रति जवाबदेह हों।
हाँ, पर कभी कभी मीडिया इस बात को भूल जाता है।
जैसे कि एक बार बुलबुल बाग में हुआ था, तो आओ बेताल 26 में बेताल की जुबानी सुनते हैं बुलबुल बाग की ये कहानी।
बेताल 26, बेताल 26, बेताल 26 रे।
बुलबुल बाग में चू चू एरियल नेटवर्क परसों तक और खुसर फुसर बहुत जनप्रिय थे। बुलबुल बाग की रोजमर्रा की घटनाओं के साथ साथ बूढ़े बरगद में हो रही गतिविधियों के बारे में इन्हीं सबसे पता चलता। एक बार बुलबुल बाग के खरगोश परसों तक के काट छांट कीड़े से मिलने गए।
काट छांट कीड़ा जी, हम आपके पास एक दरख्वास्त करने आए हैं।
जी हाँ, कहिए कहिए खरगोश जी।
सियार जी, इस बार के हमारे सालाना जलसे में हमारे घास के इलाके और उसकी गुणवत्ता पर हुई शोध पर चर्चा करेंगे, और हम चाहते हैं कि परसों तक में हमारे इस जलसे में हो रही बातें बुलबुल बाग में भी चर्चित हों।
ख्याल तो बहुत अच्छा है आपका खरगोश जी, पर जिस बीच आपका ये सालाना जलसा हो रहा होगा, उस बीच चपल चींटी और बहुत से साथियों की बैठक भी है, फिर भी हम कोशिश करेंगे।
कोशिश से ज्यादा चाहिए कांट छांट जी। खुसर पुसर ने तो पहले ही मना कर दिया।
पर हमने मना तो नहीं किया ना।
पर हाँ भी तो नहीं किया जनाब। देख लीजिए अगर हो सके तो।
खरगोश अपनी बात रखने चूचू की संचालक चकमक के पास गए, पर चकमक ने साफ साफ मना कर दिया।
देखो खरगोश, एक तो हमारे पास बहुत काम है, ऊपर से बैठक की पल पल की बात रखनी होगी, इसलिए हमारी चूचू टीम शायद ही तुम्हारे जलसे के बारे में चूचू कर पाए।
कम से कम एक चू तो हो ही सकती है।
उफ, और वैसे भी खरगोशों का सालाना जलसा, तुम्हें ज्यादा घास चाहिए, तुम्हें घास का क्वालिटी टेस्ट करना है, ये भी कोई चू करने की बात है भला।
खरगोशों की आवाज तुम्हें चप्पल चींटी तक नहीं पहुँचानी तो मत पहुँचा, पर हमें कुछ कम मत समझो।
हाँ हाँ, अपना खरगोशों का दुक्कू नेटवर्क बना लो ना, फिर हमारी मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी।
अरे वाह, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हम खरगोशों का अपना नेटवर्क, अपनी आवाज। वाह।
अरे वाह, सपने अच्छे देखते हो तुम।
खरगोश की बैठक में ये तय हुआ कि सालाना जलसे के दिन उनका एक पर्चा निकलेगा, जिसे पूरे बुलबुल बाग में बांटा जाएगा, जिसे चपल चींटी और बूढ़े बरगद तक भी पहुंचाया जाएगा, और ऐसा ही पर्चा समय समय पर निकाला जाएगा ताकि खरगोशों की आवाज सभी तक पहुंचे। तो क्या समझे?
यही कि जब तक एक ही तरह की आवाजें खबरों में रहेंगी तो लोकतंत्र के सही मायने खो जाएंगे, इसलिए खबरें चारों दिशाओं से आनी चाहिए और उनमें अलग अलग मत भी झलकने चाहिए, तभी अलग अलग दृष्टिकोणों के बीच से अलग अलग सच सामने आएंगे।
सही जवाब, और मैं चला।
अरे बेताल, अरे सुनो बेताल, अरे सुनो बेताल।
बेताल छपीसी रे।
तो कमो, आज कल हम अखबार और किताबों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का मूल हिस्सा समझते हैं, पर प्रिंटिंग प्रेस का इतिहास बहुत दिलचस्प है।
हाँ, देश विदेश में इसी के बारे में जानते हैं।
देश विदेश से, देश विदेश से।
प्रिंटिंग यानी छापने की मशीन की रचना सबसे पहले जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग ने सन 1439 में की थी। गुटेनबर्ग के प्रेस पर आधारित छपाई की विधि यूरोप के साथ साथ सारे संसार में फैल गई। फिर प्रिंटिंग प्रेस ने छपाई की परंपरागत विधियों यानी ठप्पे एवं मूवेबल टाइप आदि को भी किनारे कर दिया। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार को सूचना एवं ज्ञान के प्रसार में एक क्रांति की तरह देखा जाता है। भारत में समाचार पत्रों का इतिहास 232 वर्ष पुराना है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। गोवा में वर्ष 1557 में कुछ ईसाई पादरियों ने एक पुस्तक छापी थी जो भारत में छपी पहली किताब थी। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत का पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिकी नामक एक अंग्रेज को प्राप्त है, जिसने वर्ष 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। संवाद कौमुदी नामक एक साप्ताहिक पत्र 1821 में शुरू हुआ। प्रख्यात समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इस साप्ताहिक पत्र के प्रबंधक संपादक बने। आज की बात करें तो इंटरनेट एक नया माध्यम उभर के आया है, जिसने सभी माध्यमों को पीछे छोड़ते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इंटरनेट के जरिए मिलने वाली सूचना और सेवाओं में ई पेपर, ईमेल और बातचीत सेवाओं के साथ साथ फिल्में, संगीत, वीडियो के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का आदान प्रदान हो रहा है और लोग एक दूसरे से अपनी बात कह पा रहे हैं।
वाह कबीर, कितना कुछ बदल गया ना, समाज के बदलने के साथ ही तकनीक का भी बदलाव।
हाँ, पर आज की इंटरनेट की दुनिया में भी क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बात रख पाने में सक्षम नहीं है? क्या इस डिजिटल दौर में कुछ लोग पीछे तो नहीं छूटे जा रहे? जानकार है कहते में आज हमारे साथ हैं आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन के डायरेक्टर एन रामाकृष्णन जी, जो पिछले 15 सालों से सामुदायिक रेडियो और संचार की तकनीक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मीडिया स्वामित्व यानी मीडिया ओनरशिप में विविधता होने के समर्थक हैं।
तो चलो हमारे अगले सेगमेंट जानकार है कहते में इसी के बारे में जानते हैं।
जानकार है कहते, जानकार कहते।
रामाकृष्णन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में सामुदायिक रेडियो की वर्तमान स्थिति पर थोड़ी रोशनी डालिए।
देखिए, सामुदायिक मीडिया जो है वो मीडिया है जिसपे जो स्वामित्व है वो समुदाय का हो, यानी कि समुदाय द्वारा, समुदाय के लिए और समुदाय से। हमारे देश में, भारत में, औपचारिक तरीके से सामुदायिक रेडियो एक प्रक्रिया काफ़ी प्रचलित है। 200 से ऊपर स्टेशन आज के दिन हमारे देश में हैं, लेकिन क्या ये वाकई में सामुदायिक कहला सकते हैं, उस पर अभी भी कई सवाल हैं, क्योंकि ये भी एक लाइसेंस की प्रक्रिया के जरिए ही किया जाता है, जिसपे सरकार का हाथ है और सरकार की लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है। तो कुछ ही संस्थान हैं और कुछ ही किस्म के संस्थान हैं जो सामुदायिक रेडियो चला सकते हैं। तो फिर सवाल ये आ जाता है कि वाकई में क्या ये समुदाय के हाथ में है? समुदाय के लिए ज़रूर बन रहा है, लेकिन क्या ये समुदाय से और समुदाय द्वारा किया जा रहा है, उस पर सवाल कई हैं। तो उम्मीद यही है कि सामुदायिक रेडियो जहाँ पर है उसमें समुदाय का पूरी तरह उसके मैनेजमेंट में, उसको चलाने में, उस पर निर्णय लेने में उसका हाथ हो। तो मान लीजिए हमारे सामने ये एक बड़ी चुनौती है और ज़रूरी है कि हम इसको उस ओर ले जाएं।
अच्छा, आपके अनुसार मीडिया में स्वतंत्रता लाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए, चुनौतियों तो कई हैं मीडिया के सामने। मीडिया कितने स्वतंत्र हैं, मीडिया किसके अधीन हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारे देश में खासकर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो लाइसेंसिंग प्रक्रिया और रेगुलेशन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो हमारे देश में प्रसारित मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, उन पे कई अलग अलग किस्म के रोक हैं सरकार के द्वारा, जिसमें बहुत सख्त नियम हैं कि क्या बोला जा सकता है, क्या नहीं बोला जा सकता है, कौन चला सकता है, और इसमें पूंजी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मीडिया प्रक्रिया में पूंजी की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो आखिर में यही हो जाता है कि कुछ ही संस्था हैं, कुछ ही कंपनियाँ हैं जो कि मीडिया के प्रक्रिया चला पाते हैं और कर पाते हैं। तो लाइसेंसिंग और रेगुलेशन की प्रक्रिया जो है हमारे देश में अगर कम सख्त बनाए जाएं तो शायद विविधता बढ़ जाए और जो लोगों का और सुनने वालों का और दर्शकों का हाथ होता इसमें ज़्यादा बढ़ जाता। तो इसमें खास बदलाव लाने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, ताकि लाइसेंसिंग की प्रक्रिया और रेगुलेशन की प्रक्रिया थोड़ा और आसान हो जाए।
रामकृष्णन जी, हमसे है देश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इस ज्ञानवर्धक बातचीत के बाद आइए अब सुनते हैं देश मेरा रंगरेज रे बाबू।
देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू।
छोटी बड़ा पतंगड़
भाई, पहाड़ है गंगर शंकर पार है छोटी बड़ा पतंगड़।
इंडिया सर ये चीज धुरंधर,
इंडिया सर ये चीज धुरंधर, रंग रंगीला पर जातंतर, रंग रंगीला पर जातंतर।
आज का सवाल है, भारत में सामुदायिक रेडियो की नीति किस वर्ष में लागू हुई? जवाब देने के लिए 07966210428 पर एक मिस्ड कॉल दें, हम आपको वापस कॉल करेंगे। कॉल पर दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन के लिए बटन दबाएं और पाएं सरप्राइज गिफ्ट। कॉल निशुल्क है।
और हाँ, हमें आप पत्र, ईमेल और फोन के जरिए जरूर बताएं कि आपको हमसे है देश कार्यक्रम कैसा लगा। अपनी कविताएं और गाने भी जरूर भेजें freedom@ideosyncmedia.org। SMS और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9958747972।
कार्यक्रम हमसे है देश आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के वित्तीय सहयोग से आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बुलबुल बाग की कहानी रंजीत लाल की किताब द क्रो क्रॉनिकल्स पर आधारित है।
अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का, पर हम फिर से होंगे आप सबके बीच हमसे है देश की अगली कड़ी के साथ, नई कहानियों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, मीडिया के कहे को तोल मोल कर देखिए और लोकतंत्र को और मजबूत बनाइए। नमस्कार।
हमसे देश की शान, हमसे हर जुल्म के खिलाफ है आवाज, हमसे देश है, हमसे हमसे है देश।